समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। संत कबीर का कहना है कि वे बाजार में खड़े होकर सबकी भलाई की कामना करते हैं, वो किसी से भी दोस्ती या दुश्मनी नहीं रखते। आज हम संत कबीर दास जी को उनकी जयंती पर याद कर रहे हैं। आइए इस अवसर पर आज सवेरे के इस अंक की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं नीना मैथ्यू।
June is declared as the International Day of Play by the United Nations. It is through play that children learn to build connection with nature, acquire leadership skills, improve their physical ability, and overcome their fears. Every day is an opportunity for joyful moments of play for all. On that note, good morning to you, Sir Firozi, and a very warm welcome to all our listeners tuned in to Akashwani FM Gold on 100.1 MHz and the Akashwani network. We bring you our daily news magazine program, Aaj Savere, wherein we share the latest in national and international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is 11th of June. So let's begin with the headlines.
Bilkul, Nina. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों ने विभिन्न देशों में जिस प्रकार से पहलगाम के आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद का सफाया करने की आवश्यकता के संबंध में भारत के विचारों को प्रस्तुत किया, उस पर उन्हें गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ हफ्तों में विश्व के 33 देशों की यात्रा करने वाले बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों से कल मुलाकात की, जिसमें सांसद और पूर्व राजनयिक शामिल थे। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इन प्रतिनिधियों ने शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता और आतंकवाद को खत्म करने की आवश्यकता को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों ने प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में अपने अनुभव साझा किए।
The Axiom 4 mission carrying Indian astronaut Shubhanshu Shukla and three others has been postponed for the second time. According to NASA, Axiom Space and SpaceX are standing down from the launch opportunity today to allow additional time for SpaceX teams to repair a liquid oxygen leak identified during post-static fire Falcon 9 rocket inspection. NASA has announced that a new launch date for the mission will be provided once repair work is complete. It was earlier decided to launch the mission through Falcon 9 at 5:30 p.m. Indian Standard Time. The flight was postponed for today due to bad weather conditions on Tuesday. The SpaceX Dragon spacecraft was set to lift off from NASA's Kennedy Space Center at Cape Canaveral in Florida.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार ने 2029 तक 3,00,000 करोड़ रुपए की रक्षा सामग्रियों के उत्पादन का लक्ष्य रखा है। उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विषय पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 4 वर्षों में इस क्षेत्र में देश का निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। श्री राजनाथ सिंह ने बताया कि भारत में बने रक्षा उत्पादों का निर्यात लगभग 100 देशों में किया जा रहा है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार की रणनीति का उल्लेख करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक के रूप में उभरा है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन हथियारों और साजो सामान का उपयोग किया गया वे भारत में ही बने थे।
External Affairs Minister S. Jaishankar has expressed India's support for an ambitious and balanced India-EU Free Trade Agreement, FTA, by the end of the year. During a joint press conference with the EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Kaja Kallas, Dr. Jaishankar called India and the EU two important forces of that emerging reality and stress the powerful case for forging deeper ties. The minister said it is apparent that the world order is in the midst of a profound change and these trends have intensified in many ways. He added that the world has without doubt entered an era of multipolarity and strategic autonomy. Earlier, both leaders held very open, productive talks in Brussels, covering areas of defense and security, maritime security, cyber and space. Dr. Jaishankar said he had exchanged views on the global order with the EU High Representative and discussed the situation in Europe, including Ukraine conflict, West Asia, the Indian subcontinent and the Indo-Pacific region. During the discussion, the issue of counter-terrorism also dominated the agenda, with Kallas dubbing nuclear threats as an area of mutual concern for India and the EU.
और भारत की फुटबॉल टीम कल शाम कोवलून में एक महत्वपूर्ण एएफसी एशियाई कप क्वालिफायर में मेजबान हांगकांग से 0-1 से हार गई। इस हार से भारत की सऊदी अरब में होने वाले 2027 एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करने की संभावनाएं खतरे में पड़ गई हैं और वो फीफा रैंकिंग में 133वें स्थान पर खिसक सकती है। एक अंक के साथ भारत सबसे निचले स्थान पर है और केवल ग्रुप विजेता ही 2027 एएफसी एशियाई कप के लिए क्वालिफाई करेगा।
Union Minister of State for Road Transport and Highways, Harsh Malhotra, has credited Prime Minister Narendra Modi for introducing a politics of performance in the country. In a podcast with Akashvani News, Mr. Malhotra commended the Modi government for taking bold and decisive steps on socio-economic and strategic fronts.
ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहा हूं जिसमें आज भारत विश्व स्तर पर 160 से 62वें पायदान पर आकर खड़ा हुआ है उसके पीछे प्रधानमंत्री जी का विजन और मैं अगर एमसीए की बात करूं आज एक कंपनी ने नई कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है तो वो 3 या 4 दिन में इनकॉर्पोरेट हो जाती है क्योंकि एवरी डॉक्यूमेंट हैज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन पहले जहां 4-4 महीने लगा करते थे 6-6 महीने लगा करते थे एक कंपनी को एस्टैब्लिश होने में इनकॉर्पोरेट होने में आज 3 या 4 दिन में अगर आपके डॉक्यूमेंट सही से सबमिट हुए हैं तो 4 दिन में इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है
यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट The State of Road Transport and Highways, Harsh Malhotra, full podcast will be streaming today on Akashvani's YouTube channel, News on AIR Official and other social media platforms. Over 50,000 organizations from across the nation have registered to host Yoga Sangam scheduled to be held on the 21st of this month, which is a new benchmark for collective participation. The Ministry of Ayush in its statement said that Rajasthan has emerged as the front runner with an impressive more than 11,000 organizations registered for Yoga Sangam 2025, the highest among all states. This remarkable participation is followed by Telangana, with over 7,000 registrations and Madhya Pradesh with close to 5,000 registrations. This year's theme, Yoga for One Earth, One Health, echoes a universal call for unity and wellness. The ministry said that with over 1 lakh locations expected to host the International Day of Yoga event, Yoga Sangam 2025, the ministry invites citizens, institutions and communities to come together in this global celebration. Union Minister of State for Road Transport and Highways, Harsh Malhotra, has credited Prime Minister Narendra Modi for introducing politics of performance in the country. India has undergone a decade of remarkable transformation driven by the principles of Seva, Sushasan and Garib Kalyan. Akashvani News brings you a special feature on the government's efforts over the last 11 years across key sectors. Today we discuss ease of living, how reforms and initiatives have made daily life simpler, more secure and more dignified for every citizen.
Improving the everyday lives of middle class has been a central focus of governance over the last decade. From housing and healthcare to urban mobility and digital access, the government has made sustained efforts to make life simpler, more secure and more convenient for the middle class. Under the Pradhan Mantri Awas Yojana Urban, more than 1.16 crore houses have been sanctioned and nearly 93 lakh homes have already been completed, while the Smart Cities Mission has transformed infrastructure with over 93% of 7,545 approved projects completed. The metro network has quadrupled in a decade, growing from just 248 kilometers in 2014 to over 1,000 kilometers in 2025. While the Udaan scheme has made air travel affordable and accessible for the common people, connecting 88 airports through 625 routes, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana has emerged as one of the world's largest publicly funded health assurance schemes, with over 41 crore Ayushman cards issued. The rise of Jan Aushadhi Kendras, now numbering over 16,000, has made quality medicines up to 80% cheaper and brought essential medicines within reach of the common citizen. Platforms like DigiLocker has reduced the need for carrying or submitting physical copies. More than 52 crore users have signed up on this, underlining the utility of the service. While the Umang app, with over 8 crore users, offers services from over 200 departments all in one place. Aadhaar, now covering over 141 crore citizens, continues to streamline welfare delivery and reduce leakages. Together, these initiatives ensures India's growing middle class lives with pride, convenience and confidence. Vishnu PS, Akashvani News, Delhi.
Vikasit Bharat ka Amritkaal. Seva, Sushasan, Garib Kalyan ke 11 saal.
श्रोताओं, ये थी देश दुनिया की हलचल और अब आपको देंगे महानगरों का हाल। शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से, जिनके बारे में जानकारी देंगी नीना।
यस सर फिरोजी, लेट्स स्टार्ट विद चेन्नई न्यूज। लेफ्टिनेंट जनरल करण बीर सिंह बरार, General Officer Commanding Dakshin Bharat Area of the Indian Army, visited the Defence Public Sector Unit, the Armoured Vehicles Nigam Limited at Avadi in Chennai on Tuesday. The General Officer conducted discussions on enhancing the production capabilities of the military manufacturing house, expediting its delivery schedules and indigenization efforts as evidenced during the Operation Sindoor. He also briefed the AVNL hierarchy on future warfare requirements needed for adoption of the evolving technology in the defense sector and tech infusion against emerging threats. The general officer also planted a sapling on the EVNL premises during his visit. Now, news from Bengaluru. Karnataka Governor Thavarchand Gehlot addressed the 14th convocation of the University of Horticultural Sciences in Bagalkot yesterday. He highlighted the vital role of horticulture in the nation's economic development and agricultural GDP. The sector contributes significantly to generate employment and cares for environmental sustainability and nutritional security. The governor noted that India has high-quality flower production, which is gaining international recognition. However, he suggested that the horticulture farms should diversify into floriculture and medicinal plant cultivation, as there is increasing global demand for cosmetics and herbal products. The governor had encouraging words for the youth to explore floriculture as a business opportunity, as this is an area where they can thrive as entrepreneurs. He told the youth to be actively involved in national initiatives such as Startup India, Digital India and Atmanirbhar Bharat. He suggested bridging the technology gap and boosting production. He called upon the farmers to embrace advanced cultivation techniques by having close proximity to agri-scientists. News from Hyderabad. The Telangana government has secured a significant investment of over 2,150 crore rupees in the biotech, technology and fintech sectors. An official release stated that the investment is expected to promote innovation and growth, further positioning Telangana as a global hub for emerging industries, they said. Telangana Industries and IT Minister D. Sridhar Babu said that an MOU was signed with two groups which will significantly boost Telangana's biotech, AI and innovation growth. As venture capitalists, they aim to promote these industries and help them become global leaders. The minister said this investment reflects trust in the state government, talent and entrepreneurs' hard work. He further said the government invites investors to explore opportunities in Tier 2 and Tier 3 cities across Telangana, fostering regional innovation and growth. And now, Sarfirozi, what's news from Delhi, Mumbai and Kolkata?
Ji, Neena, sabse pehle baat karenge Rajdhani Delhi ki. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी में विद्यालयों द्वारा ली जाने वाली फीस को विनियमित करने के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि ये अध्यादेश दिल्ली के 1600 से अधिक निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वृद्धि को रोकने के लिए एक शक्तिशाली तंत्र के रूप में काम करेगा।
लगातार बड़े बड़े स्कूल जो डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के साथ कर रहे थे वो सब आज अंत हो गया। आज का दिन दिल्ली की जनता के लिए एक सुनहरा दिन है जब दिल्ली की मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व उनकी अध्यक्षता में कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन बिल को अध्यादेश के रूप में जारी करने का प्रस्ताव पारित किया है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज विकसित कृषि संकल्प अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली के तिगीपुर, बख्तावरपुर और उत्तरी दिल्ली में किसानों से मुलाकात करेंगे। श्री चौहान किसान चौपाल के जरिए किसानों से संवाद भी करेंगे। कृषि मंत्री कृषि ड्रोन के उपयोग का भी अवलोकन करेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीनतम प्रौद्योगिकियों, अनुसंधान विकास और सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार इस महीने की 14 तारीख को 33 नवनिर्मित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उद्घाटन करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में एक संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए राजधानी भर में 1100 से अधिक ऐसे स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे के समर्थन ने दिल्ली सरकार पर स्वास्थ्य सेवा और परिवहन का बोझ कम करने में मदद की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने दिल्ली सरकार को लगातार सहायता प्रदान की है। और अब खबरें मुंबई मेट्रो से। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कल मुंबई मेट्रो लाइन 3 के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का शुभारंभ किया। कार्ड से एक्वालाइन के नाम से प्रचलित मेट्रो लाइन 3 पर आरे और आचार्य अत्रे चौक स्टेशनों के बीच यात्रा की जा सकेगी। इससे मेट्रो लाइनों के अलावा बेस्ट बसों और अन्य एकीकृत परिवहन प्रणालियों में भी उपयोग किया जा सकेगा। महाराष्ट्र के कृषि विभाग ने किसानों से बुआई में जल्दबाजी न करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक के बाद ये सलाह जारी की गई। इस दौरान राज्य भर में वर्षा और सिंचाई के लिए जल उपलब्धता की समीक्षा की गई। इस बीच मौसम विभाग ने कल से 15 जून के बीच कोंकण के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। और एक खबर कोलकाता से भी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज दक्षिण बंगाल के मुर्शिदाबाद और नादिया जिलों में गंगा नदी के कटाव पर चर्चा होने की संभावना है। एजेंडे में दोनों प्रभावित जिलों के मौजूदा हालात और इन मामलों की स्थिति और खराब होने से रोकने में सिंचाई और जलमार्ग विभाग की भूमिका पर चर्चा शामिल है। श्रोताओं, अब आपको देते हैं महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली से। दिल्ली की बात करें तो यहां आज लू चलने की संभावना है। न्यूनतम तापमान के 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 44 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, गरज के साथ बिजली कड़कने की संभावना है और हल्की बारिश हो सकती है। न्यूनतम तापमान के 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कोलकाता में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली कड़कने की संभावना है। न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 36 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और नीना, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
Yes, Sir Firozi. Chennai is expected to have partly cloudy sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and maximum will be around 38 degrees. Bengaluru is expected to have generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and maximum will be around 32 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with light rain or drizzle. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 32 degrees Celsius.
और श्रोताओं, कार्यक्रम में अब समय है कि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और जाने कि आज यानी 11 जून का दिन क्यों खास है। आज साल के छठे महीने का 11वां दिन और जाते साल का 162वां दिन है और अब 203 दिन का सफर इस साल के पूरा होने में बाकी है। जैसा कि हमने बताया, 11 जून का दिन देश और दुनिया के इतिहास में कई कारणों से खास है। तो वर्ष 1776 में आज ही के दिन अमेरिका की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार करने के लिए समिति बनाई गई।
In 1770, Great Barrier Reef, Captain James Cook discovered Australia.
1921 में आज ही के दिन ब्राजील में महिलाओं को चुनाव में मतदान का अधिकार मिला।
In 1946, Viceroy interviewed Gandhiji and mooted proposal of coalition government at center.
आज ही के दिन साल 1955 में पहले मैग्नीशियम जेट हवाई जहाज ने उड़ान भरी।
In 1964, डॉक्टर जयंत नार्लिकर, ग्रेट मैथमेटिशियन ऑफ इंडिया, सबमिटेड हिज थीसिस टू रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन।
आज ही के दिन 1987 में पहली बार अश्वेत समुदाय के एबट पॉल बेटिक और बर्नी को ब्रिटेन में संसद सदस्य चुना गया। और आज ही के दिन 1987 में ही 160 वर्षों में पहली बार मार्गरेट थैचर लगातार तीसरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनी।
In the year 1991, Microsoft released its MS-DOS 5.0 operating system.
1999 में आज ही के दिन मार्गरेट थैचर लगातार तीसरी बार ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनी। और श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम में उन खास हस्तियों को याद करने का जिनकी आज जयंती या पुण्यतिथि है।
सो सर फिरोजी, टुडे वी फॉन्डली रिमेम्बर एन रदरफोर्ड। शी वॉज अ कैनेडियन बॉर्न अमेरिकन एक्ट्रेस इन फिल्म, रेडियो एंड टेलीविजन। शी हैड अ लॉन्ग करियर starring and co-starring in films playing Polly Benedict during the 1930s and 1940s in Andy Hardy series and appearing as one of Scarlett O'Hara's sisters, Karine O'Hara, in the film Gone with the Wind. Here's a dialogue from the movie Gone with the Wind.
Trouble. Oh, I know I was mad at you the night you left me on the road to Paris, and I still haven't forgiven you.
Oh, Scarlett, don't say that.
Well, I must admit I might not be alive now, only for you. And when I think of myself with everything I could possibly hope for and not a care in the world and you here in this horrid jail and not even a human jail, red a horse jail.
आज महान स्वतंत्रता सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांतिकारी धारा के प्रमुख सेनानी बिस्मिल को 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। उच्च कोटि के कवि, शायर, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार बिस्मिल किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। उनके लिखे सरफरोशी की तमन्ना जैसे अमर गीत ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई और अंग्रेजों से भारत की आजादी के लिए वो चिंगारी छेड़ी जिसने ज्वाला का रूप लेकर ब्रिटिश शासन के भवन को जला कर रख दिया।
बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे आंसू, क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल।
ब्रिटिश साम्राज्य को दहला देने वाले काकोरी कांड को राम प्रसाद बिस्मिल ने ही अंजाम दिया। बिस्मिल इनका उर्दू तखल्लुस यानी उपनाम था, जिसका हिंदी में अर्थ होता है आत्मिक रूप से आहत। उन्हें अवध की लखनऊ सेंट्रल जेल की 11 नंबर बैरक में रखा गया। इसी जेल में उनके दल के अन्य साथियों को एक साथ रखकर उन सभी पर ब्रिटिश राज के विरुद्ध साजिश रचने का ऐतिहासिक मुकदमा चलाया गया।
मिटाने से नहीं मिटते, डराने से नहीं डरते।
ग्राहम सिरिल रसल सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे टुडे। ही इज अ ब्रिटिश म्यूजिशियन, सिंगर, सॉन्ग राइटर, प्रोड्यूसर एंड गिटारिस्ट ऑफ द सॉफ्ट रॉक डुओ एयर सप्लाई। रसल वॉज बॉर्न इन आर्नल्ड, नॉटिंगहम In 1975, with Russell Hitchcock, he formed Air Supply in Australia. The duo has been singing and performing romantic songs and ballads such as Lost in Love, All Out of Love, Every Woman in the World, The One That You Love, Even the Nights Are Better, Goodbye, and Making Love Out of Nothing at All for more than 45 years. Dear listeners, here's Lost in Love by Graham Russell.
I believe there's too much to believe.
आज मिहिर सेन जी की पुण्यतिथि है। भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के ये तैराक थे। इन्होंने 1966 में पनामा नहर की एक छोर से दूसरे छोर तक 77 किलोमीटर की दूरी तैर कर पार की। मिहिर सेन 1958 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं बल्कि प्रथम एशियाई भी थे। इन्होंने सॉल्ट वाटर तैराकी में अनोखी दक्षता हासिल कर 5 महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए। इन्हें 1959 में पद्मश्री और 1967 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
Today we also remember Ben Jonson. Ben was an English playwright and poet. Jonson's artistry exerted a lasting influence on English poetry and stage comedy. He is regarded as the second most important English dramatist after William Shakespeare during the reign of James I. He used the outlet of poetry to comprehend the loss of his 7-year-old son. Let's listen to the recitation of this solemn poem by Ben Jonson.
7 years, O word lent to me, and I thee pay, exacted by thy fate on the just day. O could I lose, or father now, for why will man lament the state he should envy, to have so soon scaped worlds and flesh's rage, and if no other misery, yet age. Rest in soft peace, and ask, say, here doth lie Ben Jonson, his best piece of poetry.
आज लीला नाग की जयंती है। ये भारत की महिला क्रांतिकारियों में विशेष तौर पर शामिल की जाती हैं। ये प्रसिद्ध बंगाली पत्रकार थी। भारत के संविधान को मूल रूप देने वाली समिति में 15 महिलाएं भी शामिल थीं, जिनमें से एक ये भी थीं। इन्होंने संविधान के साथ साथ भारतीय समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने ढाका और कलकत्ता में उच्च शिक्षा प्राप्त की। ढाका में शिक्षा प्राप्त करते हुए ये मुक्ति संघ के संपर्क में आई और लड़कियों को शिक्षित करने के लिए दीपाली संघ नामक एक संगठन बनाया।
Donald Newton Van Zandt is an American rock and roll singer, songwriter and guitarist. He is best known as a member of the band 38 Special from its formation in 1974 until 2013. Here's There You Are.
There you are. I didn't know where I fit in or where I belong. All I know is I can't make it. You're the guy.
आज मानसी गिरीश चंद्र जोशी जी का जन्मदिन है। ये भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। ये पैरा बैडमिंटन की वर्ल्ड चैंपियन हैं। 2020 में वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे नंबर पर पहुंची। टाइम मैगजीन ने नेक्स्ट जनरेशन लीडर की लिस्ट में इन्हें रखा। 2011 में मानसी जोशी के साथ एक सड़क दुर्घटना हो गई जिससे इन्होंने अपना बायां पैर खो दिया। हालांकि इन्होंने हार नहीं मानी और बैडमिंटन के क्षेत्र में कई बड़े रिकॉर्ड स्थापित किए। और श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सरफिरोजी और नीना मैथ्यू को दीजिए इजाजत कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, और आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
नमस्कार।